स्वागत है आपका दिनभर में। आज है 17 अगस्त दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। शरद यादव की पहल से सांझी विरासत बचाओ सम्मेलन में जुटे 17 विपक्षी दलों के नेता, राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना।
मोदी जी कहते हैं हमें स्वच्छ भारत चाहिए और हम कहते हैं हमें सच भारत चाहिए, हमें आपका झूठा भारत नहीं चाहिए।
असम, बिहार और बंगाल में तबाही मचा रही बाढ़ में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। बंटवारे पर हमारी खास पेशकश में आज सुनिएगा पंजाब के एक ऐसे गांव की कहानी जिसका दिल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खानदान के लिए धड़कता है।
पहली बार चुनाव जीते, प्रधानमंत्री बने, हमने सारे नगर ने मिलकर बहुत ज्यादा खुशी मनाई।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। दिल्ली में बागी जेडीयू नेता शरद यादव के सम्मेलन में 17 विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने भाजपा और संघ परिवार पर तीखे हमले किए, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पहले भाषण देते थे, आजकल बिलखने लगे हैं। भारत के चंडीगढ़ में बलात्कार से गर्भवती हुई एक 10 साल की पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया है। इससे पहले पीड़िता के परिजनों ने गर्भपात के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया था। खबरों के मुताबिक बच्ची को मालूम नहीं था कि वह गर्भवती है, उसे सिर्फ इतना बताया गया था कि उसके पेट की सर्जरी की जाएगी। चंडीगढ़ के एक सरकारी अस्पताल में गुरुवार की सुबह बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची का वजन 2.5 किलो है। अस्पताल के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि माँ और बच्ची स्वस्थ हैं। बच्ची से बलात्कार का आरोप उसके करीबी रिश्तेदार पर है जो पुलिस की गिरफ्त में है। अफ्रीकी देश सियेरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में भूस्खलन से हुई भारी तबाही के बाद शवों को सामूहिक तौर पर वाटरलू शहर के पास दफनाया जाएगा। यहां देश के राष्ट्रपति और ईसाई और मुस्लिम समुदाय के नेता भी मौजूद रहेंगे। हादसे में करीब 400 लोगों की मौत हो गई है और 600 लोग अब भी लापता हैं। मुर्दा घरों के बाहर शवों को पहचानने के लिए लोगों की पंक्तियां लगी हैं। अब पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है और बेघर होने वाले लोग शरण की तलाश में हैं। सियेरा लियोन के निवासी जोसेफ विलिया ने कहा, इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए झंडे झुका दिए गए हैं, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए सरकार को और कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि परेशानी ये है कि विनाश बहुत ज़्यादा हुआ है। ये थे सियेरा लियोन निवासी जोसेफ विलिया के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने श्वेत अतिवादी समूहों और उनके विरोधियों के बीच कोई नैतिक तुलना की थी। वर्जीनिया के चार्ट्सविले में हुई हिंसक झड़पों के बाद अमरीकी राष्ट्रपति ने दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया था। सोमवार को उन्होंने श्वेत अतिवादियों की निंदा की, फिर मंगलवार को उन्होंने दूसरे पक्ष के समर्थकों को भी दोषी ठहराया। एप्पल कंपनी के प्रमुख टिम कुक समेत कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने ट्रंप के इस बयान की आलोचना की थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा कि उनके बारे में फर्जी मीडिया झूठ फैला रहा है और उनकी बात को गलत तरीके से पेश कर रहा है। ट्रंप विरोधियों में गिने जाने वाले वर्जीनिया के गवर्नर टेरी मैकॉलिफ ने कहा, Let us use this time to bring people together. हमें इस वक्त का इस्तेमाल लोगों को एकजुट करने के लिए करने दीजिए। हम संयुक्त राज्य अमेरिका हैं और शनिवार को मैंने जो नफरत देखी, मैंने वो भाषा और वो चीज़ें कभी नहीं देखी जो अफ्रीकी अमरीकी समाज, यहूदी आस्था और समलैंगिक समाज के लोगों के बारे में कही गई। अमेरिका में इस तरह की नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। ये थे डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वर्जीनिया के गवर्नर टेरी मैकॉलिफ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन ने उम्मीद जताई है कि हांगकांग में 3 लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को जेल की सज़ा दिए जाने से भविष्य के वैध विरोध प्रदर्शन हतोत्साहित नहीं होंगे। हांगकांग की एक अदालत ने 2014 के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के दौरान गैर कानूनी तरीके से जमा होने के लिए 3 छात्र नेताओं नाथन लॉ, जोशुआ वोंग और एलेक्स चो को 6 से 8 महीने जेल की सज़ा सुनाई है। सरकार ने दलील रखी थी कि इससे पहले आरोपियों को जेल ना भेजकर कोर्ट ने काफ़ी लचीला रुख अपनाया था। आलोचकों का कहना है कि ये फैसला इस बात का सबूत है कि 1997 में जब ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग सौंपा था, उसके बाद जिस आज़ादी का वादा किया था उसे ख़त्म किया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर रेडियो के साथ साथ बीबीसी हिंदी .com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से जब दोबारा हाथ मिलाया तो पुराने सहयोगी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शरद यादव उनसे बेहद नाराज हो गए। सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर करने के बाद उन्हें राज्यसभा में पार्टी के नेता का पद गंवाना पड़ा और पार्टी के भीतर वो हाशिए पर खड़े नजर आए। नीतीश और बीजेपी से नाराज शरद यादव ने उसके बाद विपक्षी दलों को इकट्ठा कर अपना सियासी दमखम दिखाने का फैसला किया। आज उनकी अगुवाई में सांझी विरासत बचाओ सम्मेलन के नाम पर 17 विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए, जिनमें राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, डी राजा, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रामगोपाल यादव जैसे नेता प्रमुख थे। क्या कुछ हुआ इस सम्मेलन में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नए सहयोगी अनुराग द्वारी।
जनता दल यूनाइटेड में हाशिए पर चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने सांझी विरासत के मंच पर दर्जनों विपक्षी नेताओं को जुटाकर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। सांझी विरासत सहेज ने उनके साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मैदान में उतरे। केंद्र सरकार को घटते रोजगार से लेकर मेक इन इंडिया पर राहुल ने जमकर घेरा।
मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, जहां भी देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, टेलीफोन देखो मेड इन चाइना, वीडियो देखो मेड इन चाइना। सच्चाई ये है कि मोदी जी का मेक इन इंडिया फेल हो गया है और आरएसएस के लोग कोर्ट्स में, ब्यूरोक्रेसी में, सेना में, मीडिया में जिस दिन सबके सब बैठ गए उस दिन ये देश उनका होगा और फिर ये आप सबसे कहेंगे, हम सबसे कहेंगे अब ये देश तुम्हारा नहीं है, अब ये देश हमारा है।
राहुल गांधी ने सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी स्वच्छता मिशन पर भी तंज किया।
मोदी जी कहते हैं हमें स्वच्छ भारत चाहिए और हम कहते हैं हमें स्वच्छ भारत चाहिए। हमें आपका झूठा भारत नहीं चाहिए। जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ झूठ मोदी जी बोल जाते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, अगर हम सब मिलकर लड़ गए, मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग आपको दिखाई नहीं देंगे।
सरकार पर हुए हमले का जवाब देने मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। प्रसाद ने कहा, राहुल आजकल भाषण नहीं देते बल्कि बिलखते हैं। चुनाव में हार के बावजूद राहुल के डर से पार्टी में लोग मुंह नहीं खोलते। प्रसाद ने आरएसएस का बचाव करते हुए कहा कि देश के लोग संघ का सम्मान करते हैं। जनता जानती है एक तरफ देश को लूटने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ देश को देने वाले।
एक तरफ देश को लूटने वाले हैं, दूसरी तरफ देश को देने वाले हैं। अब ये तो सुनकर के मुझे भी थोड़ा कौतूहल हो गया। देश को लूटने वालों को जनता ने कुर्सी से बेदखल कर दिया, राहुल गांधी जिसमें आपकी पार्टी भी है। लेकिन आज उनकी पूरी टिप्पणी से एक बात स्पष्ट हुई कि राहुल गांधी अब बिलखते हैं, भाषण नहीं देते हैं।
रविशंकर प्रसाद ने सांझी विरासत में शामिल लोगों को डरे लोगों का गठबंधन बताते हुए शरद यादव पर भी हमला किया।
शरद जी के बारे में मुझे एक ही बात कहनी है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि जिस व्यक्ति की पूरी राजनीति शुरू हुई जेपी के चरणों में और कांग्रेस विरोध में, वो आज अपने को राहुल गांधी के बगल में बैठकर बहुत पुलकित महसूस कर रहे हैं। ये डरे हुए लोगों का गठबंधन है, मोदी जी का डर, भाजपा का डर।
शरद यादव राज्यसभा में अब अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं हैं, फिर भी उनके मंच पर 17 राजनीतिक दलों ने शिरकत की। मंच से गुलाम नबी आजाद ने यह तक कह दिया कि शरद यादव के नेतृत्व में ही असली जेडीयू है, नीतीश के नेतृत्व में बीजेपी की जेडीयू है। हालांकि ये देखना होगा कि विपक्षी दलों की अभी नजर आ रही एकता आने वाले समय में भी कायम रहती है या फिर ये महज मंच पर अपनी फौरी मौजूदगी दर्ज कराती है। अनुराग द्वारी, बीबीसी दिल्ली।
विपक्ष को एकजुट करने की इस कोशिश का राजनीतिक रूप से कितना फायदा होगा और क्या ये विपक्षी एकता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन को चुनौती देने में कामयाब होगी, मैंने यही सवाल पूछा वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद से।
देखिए, शरद यादव ने अपना अलग रास्ता चुन लिया है, लेकिन वो बहुत ही देखभाल कर चल रहे हैं। अब इसको जिस तरह से उन्होंने सांझी विरासत बचाओ सम्मेलन नाम दिया और सीधे सामने आने की बजाय इस मंच के आधार पर सम्मेलन को बुलाया गया, इस नाम के आधार पर सम्मेलन को बुलाया गया, इसका मतलब ये है कि वो राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रहे हैं, अपना बचाव करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। दरअसल कुल मिलाकर जो लालू की रैली 27 अगस्त को पटना में होने वाली है उसमें ये जाएंगे और नीतीश कुमार तब तक इंतजार करना चाहते हैं और ये भी तब तक का टाइम बाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। आज के सम्मेलन का जहाँ तक अर्थ है उसको विपक्षी एकजुटता कह सकते हैं, लेकिन विपक्षी एकजुटता का जिस तरह से नष्ट हुई है, जिस तरह से उसका विध्वंस हुआ है नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाने के बाद, उसके बाद ये कवायद जो है वो बहुत ही एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि बहुत हताश लोगों का एक जमावड़ा बनकर रह सकता है, ये लगता है मुझे।
राहुल गांधी ने इस मंच से बीजेपी पर और केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन पर कई हमले किए, आप क्या देखते हैं भविष्य इसका, इस पूरे विपक्षी एकता जो नजर आ रही है इसका राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं आप?
देखिए, शरद यादव या फारूक अब्दुल्ला या डी राजा या सीताराम येचुरी या लालू प्रसाद यादव, वो किसी भी मायने में ये बात नहीं मान सकते कि इस पूरे गठबंधन का या विपक्षी मोर्चे की जो पूरा पहल है उसका फेस जो है वो राहुल गांधी बने, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में रहते हुए ही, जो कि इतनी बड़ी पार्टी थी, उसका जिस तरह से हश्र यहाँ आकर हम देख रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी से बहुत तरह की संभावनाएं नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत तकड़ा आक्रमण किया है, लगातार वो आक्रमण करते रहे हैं, और इस बहाने वो दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो, लेकिन विपक्ष में इतनी दरारें हो गई हैं, कुल मिलाकर जो विपक्ष है उसकी पूरी की हालत खराब है, और जब तक ये कोई एक जमीन से निकला हुआ नेता आगे नहीं आता है, जो लोगों के इश्यूज को नहीं समझता है, तब तक ये एक तरह की, ये आपने प्रदर्शन किया, ये मैंने प्रदर्शन किया, एक तरह का कहना चाहिए कि अपना शक्ति परीक्षण एक तरह का वो दोनों तरफ से होता रहेगा, और उस शक्ति परीक्षण में निश्चय ही प्रधानमंत्री मोदी का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद, जिनका मानना है कि आज जो राजनीतिक हालात नजर आ रहे हैं उसमें विपक्षी एकता की कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का पलड़ा बहुत भारी नजर आ रहा है। विपक्ष आज उन्हें चुनौती देने की स्थिति में नहीं है।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारत के बिहार, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में बाढ़ के कहर से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। असम के 24 जिलों में अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है, वहीं बिहार के बाढ़ प्रभावित 14 जिलों में अब तक 72 लोगों की मौत हुई है। बंगाल में 14 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और 30 से ज्यादा लोगों को बाढ़ में फंसकर अपनी जान गंवानी पड़ी है। अगर बिहार की बात करें तो बाढ़ से मची तबाही से सबसे ज्यादा प्रभावित अररिया जिला हुआ है, यहां अब तक 23 लोग बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। हमारे सहयोगी नीरज सहाय अररिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे।
सीमांचल के अररिया का जिला प्रशासन अपनी पुख्ता इंतजाम के दावे कर रहा है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित गांव के लोगों से मिलने पर सच्चाई खुद ही सामने आ जाती है। अभी मैं हरिया पंचायत के बलुआ गांव के करीब 100 मीटर आगे पानी के बीचों बीच चल रहा हूं। पानी मेरे घुटने के थोड़े ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन इसकी तेज़ धार को मैं आसानी से महसूस कर पा रहा हूं। जहां तक मेरी नज़र जा रही है वहां दूर दूर तक पानी, डूबे मकान और मृत मवेशी बहते नजर आ रहे हैं। कुछ ग्रामीण मेरे साथ पानी में खड़े हैं।
बहुत खराब स्थिति है यहाँ।
राहत शिविर तो लेकिन चल रहा है।
चल रहा था सर, कल आया जब पानी घटने लगा तो बोर्ड तीन चार बोर्ड आया, उसमें भी कुछ आदमी ही निकल सका। शाम हो गया, बाकी छोड़ के वो चले गए कि नहीं अब हमने करें।
दो दिन के बाद अभी भी आदमी टीन पर चढ़ चढ़ के अभी तक घर में पानी उसका है, और दो दिन के बाद प्रशासन आया, रोड पर ही जो चूड़ा मुड़ी हल्का फुल्का देना था वो दे दिया। बाकी गांव में अभी भी आदमी फंसे हुए हैं, बाकी DPRF का टीम आया, उसके बाद थोड़ा इधर उधर मतलब नाम लिखाया, फोटो खिंचाया, उसके बाद चल दिया। कितना आदमी मर करके फंस गया इसका कोई गिनती नहीं है।
फिलहाल गांव में पानी नहीं है, लेकिन बगल के बांसबाड़ी, रामपुर, मोहनपुर, खरैया बस्ती आदि गांव अब भी पानी में डूबे हैं। रामपुर मोहनपुर के ग्रामीण भी यहां हैं।
हम लोग यहां चार रोज से जो भर गला पानी है। हम लोग सार्वजनिक तौर पर DM साहब को फोन किए थे कि सर हम लोग यहां से निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तो DM साहब आश्वासन दिए कि हम राहत भेज रहे हैं।
आदमी मोटा मोटी सर 5 गए, मिल ही नहीं रहा, लापता है। रहने सर हम लोग छत पे रह रहे हैं, छत पे कोई गाछ पे, कोई पानी पे।
क्या बोलेंगे, विशेष बात क्या बोले, जो एक आदमी बोला उतनी बात 100 आदमी बोलेगा, वही
लंका जैसा वहाँ टप्पू बना हुआ है।
प्रशासन के अनुसार बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने के लिए 140 नाव और बोट चलाए जा रहे हैं, लेकिन गांव जाने पर यह दावा खोखला सा लगता है। नीरज सहाय, BBC अररिया।
बिहार के बाढ़ प्रभावित अररिया जिले का हाल बता रहे थे नीरज सहाय। दो दिन पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी पर आरोप लगाया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें कहा गया कि वो अपने भाषण में बदलाव करें। उनका आरोप है कि ऐसा कहे जाने पर उन्होंने भाषण में बदलाव करने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके भाषण का प्रसारण नहीं किया गया। उन्होंने प्रसार भारती के इस कदम को अलोकतांत्रिक, निरंकुश और असहिष्णु बताया है। बीबीसी संवाददाता अभिमन्यु कुमार ने इस मामले पर माणिक सरकार से खास बात की।
Basic objection is this: they cannot dictate any elected chief minister to.
मुझे आपत्ति इस बात की है कि उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे वे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के भाषण को बदलने का हुक्म दे सके।
Record the speech of chief minister.
उन्होंने भाषण रिकॉर्ड करने का आग्रह मुझसे किया था।
And it was recorded on 12th evening. It was scheduled to be broadcast by All India Radio and telecast by Doordarshan.
12 तारीख की शाम को यह रिकॉर्ड किया गया था। यह तय किया गया था कि 15 अगस्त की सुबह को इसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा।
On 14th evening, they sent a letter. In that letter, they asked Chief Minister to reshape his speech. Chief Minister did not agree.
14 अगस्त की शाम को उन्होंने एक पत्र भेजा जिसमें मुझसे मेरे भाषण में बदलाव करने का अनुरोध किया गया। मैंने इनकार कर दिया। फिर स्पीच को एडिट कर प्रसारित किया गया। यह असहिष्णुता भरा कदम है। मैंने अपने भाषण में सांप्रदायिकता, असमानता और बेरोजगारी पर प्रश्न उठाए थे। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। यह ठीक नहीं है। ऐसा इमरजेंसी के समय होता था। मैंने अपने भाषण में जो प्रश्न उठाए थे उसे सही और गलत ठहराने वाला प्रसार भारती कौन होता है? वह भाषण बदलने का हुक्म नहीं दे सकता है। आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? मुझे लगता है कि जनता को इस दिशा में सोचना शुरू करना चाहिए। आप सब कुछ मुझसे ही क्यों उगलवाना चाहते हैं?
ये थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार। माणिक सरकार के आरोपों पर हमने प्रसार भारती की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वहां की अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटा दिया है। इस बात से उनके समर्थक परेशान हैं और नवाज शरीफ भी रैलियां कर अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय पंजाब में एक गांव ऐसा है जो नवाज शरीफ और उनके परिवार की खुशी में खुश और गम में गमगीन होता है? हम बात कर रहे हैं पंजाब के गांव जाति उमरा की, जो शरीफ खानदान का पुश्तैनी गांव है और उन्हें हमेशा अपने दिल में रखता है। बीबीसी हिंदी की बंटवारा श्रृंखला में आज सुनिए बीबीसी संवाददाता सुहैल हलीम की रिपोर्ट, जो जाति उमरा से होकर लौटे हैं।
बेगन बेनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया।
विभाजन के 70 साल बाद भी भारतीय पंजाब के एक छोटे से गांव का दिल शरीफ खानदान के लिए धड़कता है। अमृतसर के पास स्थित जाति उमरा शरीफ खानदान का पुश्तैनी गांव है, जिसका गुरुद्वारा उनके पुराने घर की जमीन पर ही बना हुआ है।
सात नाम वाहे गुरु, सात नाम वाहे गुरु।
मैं गांव के सरपंच दिलबाग सिंह के घर पहुंचा तो एक दीवार पर शाहबाज शरीफ की तस्वीर टंगी हुई थी। मेरे दिमाग में सवाल उठा कि क्या ये हिंदुस्तान की एक अकेली दीवार है जिस पर शाहबाज या नवाज शरीफ की तस्वीर टांगी गई हो। दिलबाग सिंह कहते हैं कि उनके पिता और नवाज शरीफ के पिता मियां मोहम्मद शरीफ दोस्त थे।
पहली बार चुनाव जीते, प्रधानमंत्री बने, हमने सारे नगर ने मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई। यदि मतलब कोई भी उन्होंने मतलब पिछे जे को कष्ट आया उसको देश निकाला दिया गया, ता भी गाँव वाले ने सभी ने मिलकर गुरु घर जहाँ उनका घर था वहाँ पर प्रार्थना की, भगवान ने मंजूर कर लिया, उसके पाकिस्तान फिर वापस आ गए।
गुरुद्वारे के ग्रंथी इंद्रजीत सिंह ने मुझे बताया कि काफी वक्त पहले शरीफ खानदान ने खुद गुरुद्वारे को अपनी जमीन दे दी थी।
1982 में जब एशियन खेड़ा हुई थी तो उस वक्त वो परिवार समेत तो उनके मियां नवाज शरीफ के बुजुर्ग और वो आप सारा फैमिली जहाँ नगर को सारे को मिलने वास्ते आए, और जो अपने ने अपना घर देखा तो इसकी हालत जो खस्ता हो चुकी थी, जहाँ गुरुद्वारा साहब वैसे ही नज़दीक था तो सारे नगर के नाल उन्होंने सलाह की कि गुरुद्वारा साहब के नाल ही ये जोड़ दिता जाए।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पिता विभाजन से पहले ही यहाँ से चले गए थे, लेकिन उन्होंने गाँव से नाता नहीं तोड़ा और अब यहाँ के लोग अपने उन पड़ोसियों से मिलने जाते रहते हैं जो अब बहुत मशहूर हो गए हैं। दिलबाग सिंह,
गांव वालों से तो उसने क्या भी कम से कम पिंड तो जदों भी तुसी पाकिस्तान आओ घटो घट एक 100 बंदा जरूर आवे सानू मिलने के लिए, सानू भी पता लगे साडे पिंड तो सानू मिलने वास्ते आए। ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਜਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਥੇ ਕੇ ਸਾਥ, ਮਾਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਜਾ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕੀਆ।
2013 ਮੇਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਯਹਾਂ ਆਏ ਤੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਓਂ ਕਾ ਹੁਲੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਆ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸਰ ਝੁਕਾਨੇ ਕਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਜਬ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਮੈਂ ਤੋ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਕਿਆ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਉਸਕਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹਕੀਮੀ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਛੋਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਪਰ ਆਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਹਮ ਤੋ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਕੋ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੋ ਮਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਥੇ ਤੇ ਔਰ ਕਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿਆ।
ਮੈਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਜਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਆਕਰ ਚਰਮਪੰਥੀ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਨ੍ਹੇਂ ਕੈਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਬੋਲੇ
ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ, ਉਸਕੇ ਬਸ ਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਤ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਜੋ ਉਧਰ ਕੇ ਜੋ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਨਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਝੇ ਗਾਓਂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੁਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਮੇਂ ਉਨਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਕਾ ਇੱਕ ਊਂਟ ਗਿਰ ਗਿਆ ਥਾ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਥਾ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਲੋਕ ਮਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਹਮ ਬਸ ਯਹੀ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਵੋ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੋਨੋ ਮੁਲਕੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ।
ਜੇ ਤੋ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਾਤ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਆਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੋਲੀ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਉਸਕੇ ਵੀ ਮਰਤੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਮਰਤੇ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਪਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਤਾ ਮਨ ਕੋ। ਜੇ ਹੀ ਸੋਚਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਕਾ ਪਿਆਰ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ।
ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾ ਗਾਓਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਾਜਨ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਕੇ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਫ਼ਰ ਪਰ ਨਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ ਹਲੀਮ, ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ, ਪੰਜਾਬ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਕੋ ਕੈਸੀ ਲਗੀ ਹਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀਏਗਾ। ਔਰ ਅਬ ਆਪਕੀ ਚਿੱਠੀਓਂ ਕੀ ਬਾਰੀ, ਚਲਤੇ ਹੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਔਰ ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਾਸ।
ਆਪਕੀ ਰਾਏ। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और मेरे साथ
सरोज सिंह।
सरोज सिंह हैं, सरोज सिंह का भी नमस्कार। सरोज सिंह को आप एक बार पहले सुन चुके हैं, हमारी नई साथी हैं और चिट्ठियां लेके आई हैं सरोज, और आप ईमेल भी लेके आई हैं। शुरुआत कहां से करेंगी?
जालंधर से हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है, कर्नल PS रंधावा है। गानिया की बेत गांव के बारे में एक प्रसारित रिपोर्ट के बारे में इन्होंने लिखा है, रिपोर्टर ने इस गांव का बंटवारे के संदर्भ में महत्व तो सामने रखा था लेकिन वो इसे ठीक से प्रसारित नहीं कर पाए, ये उनका कहना है। और इससे क्या कुछ हासिल हुआ उस गाँव में, इस बारे में भी वो चाहते थे कि इस रिपोर्ट में जिक्र हो।
कर्नल रंधावा, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम सुने और समय निकाला हमको पत्र लिखने के लिए, ईमेल लिखने के लिए। हमें उम्मीद है कि हम अपने जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें ऐसी सामग्री प्रस्तुत करेंगे जिनसे आपको खुशी मिले और संतुष्टि मिले। जो बात आपने इस खास रिपोर्ट के बारे में कही है, आपका मुद्दा बहुत सही है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान और भारत जो रावी नदी को एक दूसरे की तरफ धकियाने की कोशिश कर रहे हैं जमीन हासिल करने के लिए, वो एक मुद्दा वहां का हो सकता है, लेकिन हमारे संवाददाता ने उस एंगल से, उस कोण से उस खबर को नहीं देखा। लेकिन ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब सरहद पर जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम अपने प्रसारणों में, अपने कार्यक्रमों में रिपोर्ट करेंगे, तो ये जो सुझाव आपका है उसका हम ख्याल करेंगे।
अगला ईमेल है गणेश प्रसाद हुजदार का, BBC हिंदी और उर्दू सर्विस के फेसबुक लाइव पर जो साझा शायरी कार्यक्रम देखा और सुना, उस प्रोग्राम की तारीफ में उन्होंने लिखा है कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए ये कमाल है, अभी ये कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित नहीं हुआ लेकिन हमारे रेडियो के श्रोता इसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फेसबुक लाइव हमारे श्रोता गणेश प्रसाद जी ने सुना होगा। कल हमने 2 घंटे का ये कार्यक्रम कराची और दिल्ली के बीच में किया, नए नए शायर थे उसमें, कवि थे और संगीतकार भी थे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में आप रेडियो पर उस कार्यक्रम को, उसका संपादित जो भाग है, जो हिस्सा है, वो आप सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा।
अगला खत है शमीम अनवर अंसारी का, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। इन्होंने लिखा है, BBC हिंदी को मेरा सादर प्रणाम। रेहान फजल द्वारा भारत विभाजन के 70 वर्ष पूरे होने पर जो विशेष रिपोर्ट प्रसारित की गई थी वो उन्हें बेहद पसंद आई और और खासकर वो हिस्सा जब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रथम ध्वजारोहण समारोह को 25 फीट की दूरी से सलामी दी थी।
जी जी, ये तथ्य रेहान फजल की उस रिपोर्ट में था और इस तरह के तमाम दिलचस्प तथ्य वो अपनी रिपोर्टों में लाते हैं। उनका तो खैर कोई जवाब ही नहीं है और ऐसी बहुत सारी और चिट्ठियां भी आई होंगी।
ये शमीम का ये पहला खत है, ये भी उन्होंने इसमें साथ में लिखा है और ये लगातार सुनते रहते हैं।
ये शमीम अनवर अंसारी हैं, इनका ग्राम दीपपुर खुदागंज जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश भारत, ये पूरा इन्होंने अपना पता लिखा है। तो शमीम भाई चिट्ठी लिखते रहें, इंतजार रहेगा।
अगला खत जो है वो हमारे पास आया है गौरी सेन का, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DRDO में काम करती हैं और इन्होंने जो रिपोर्ट थी आजादी आधी रात को, इस किताब से जो
रेहान फजल नहीं, ये जिसके जिक्र अभी कर रहे थे हमारे,
जी बिल्कुल बिल्कुल वही, उसी रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा है और कहा है कि जिस किताब से उन्होंने बहुत सारे अधिक अंश उसके उद्धृत किए थे वो किताब उन्होंने भी पढ़ी है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत लंबी चिट्ठी लिखी थी, पूरी चिट्ठी का तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि समय कम है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए हमारे रेडियो कार्यक्रम बहुत ही मुफीद होते हैं, काफ़ी उपयोगी होते हैं। और इन्होंने एक अपने मेंटोर कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, उनके बारे में भी लिखा था कि उन पर कुछ कार्यक्रम किया जाए। अभी तो वो संभव नहीं है, लेकिन अगर हाँ, अगर कभी संभव होगा तो हम सोचेंगे।
अगला खत है राहुल कुमार का, ये पटना बिहार से लिखते हैं कि बहुत दिनों से देख रहा हूँ किसी भी घटना पर BBC का माइक नहीं होता और रिपोर्टर भी नहीं होते, लेकिन जब रेडियो प्रसारण सुनता हूँ तो घटनास्थल की वही अथवा वैसी ही रिपोर्ट सुनाई देती है। कहीं BBC दूसरे चैनल या रिपोर्टर्स की सामग्री तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये उनका प्रश्न है।
राहुल कुमार गांव काजी चक पोस्ट खजुरार जिला पटना बिहार से, पूरा पता बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राहुल कुमार को फिर ये शिकायत होगी कि मेरा पूरा पता क्यों नहीं बताया। तो राहुल जी, आपने बात तो महत्वपूर्ण कही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप BBC की वो रिपोर्टें भी सुनते होंगे जो दूर दराज के गांवों से हमारे संवाददाता इकट्ठे करते हैं, आवाज़ें लाते हैं, लोगों की तकलीफें, लोगों की खुशियाँ, ये सब आप तक पहुँचाते हैं। तो ये मिला जुला है, कभी हम एजेंसीज़ की रिपोर्ट लेते हैं, जैसे बहुत सारी एजेंसी हैं, न्यूज़ एजेंसीज, उनकी हम रिपोर्टें, उनकी हम इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे संवाददाता जाते हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता बोलते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि BBC के श्रोताओं के साथ ये कुछ किसी किस्म की दगाबाजी हो रही है। आप सुनते रहिए और हमें यह भी बताइए कि कौन सी रिपोर्ट जो दूसरी जगहों पर आपको नहीं मिली हमारे प्रसारणों में मिली, हमारी वेबसाइट में मिली, तो हमें बहुत खुशी होगी। इसी चिट्ठी के साथ अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो आपकी इजाजत हो तो मैं पता बता दूं।
जी बिल्कुल।
तो हमारा पता है BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और अब खेल समाचारों के साथ स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं इंदु पांडे। जी इंदु जी,
शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में अहम भूमिका निभाने वाले शिखर धवन और लोकेश राहुल ने ICC टेस्ट रैंकिंग में करियर की टॉप रैंकिंग हासिल की है। शानदार फॉर्म में चल रहे लोकेश राहुल अब ICC की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 बैट्समैन में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के बैट्समैन शिखर धवन ने 3 टेस्ट सीरीज में 2 शतक की मदद से सबसे अधिक रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुन लिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज U19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें भारतीय टीम का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा और ये टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला होगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत अगले साल 13 जनवरी से होगी और समापन 3 फरवरी को होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया खेल समाचारों के लिए। समय कम है, कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। दिल्ली में बागी JDU नेता शरद यादव के सम्मेलन में 17 विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने भाजपा और संघ परिवार पर तीखे हमले किए। भारत के चंडीगढ़ में बलात्कार से गर्भवती हुई 10 साल की एक पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया है। अफ्रीकी देश सियेरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में भूस्खलन से हुई भारी तबाही के बाद शवों को सामूहिक तौर पर वाटरलू शहर के पास दफनाया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने श्वेत अतिवादी समूहों और उनके विरोधियों के बीच कोई नैतिक तुलना की थी। BBC समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया अजित सारथी ने और फेसबुक पर यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें और उनका विश्लेषण जानने के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी .com के साथ। नमस्कार।